अध्याय 18 श्रम व्यवस्था विभिन्न प्रकार दास श्रमिक तथा दासों के अन्य प्रकार। प्राचीन भारत में श्रम व्यवस्था। भूमिका, आर्यों के सामाजिक संगठन में व्यापारी तथा कृषकों को वैश्य वर्ग में रखा गया। शिल्पियों तथा द्विजों की सेवा के लिए श्रमिकों को शूद्र कहा गया। पूर्व वैदिक युग में श्रम को महत्व दिया गया। किसी भी व्यवसाय पर सामाजिक दोष नहीं लगाया गया। वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण युग में दो श्रमिक वर्गों वैश्य एवं शूद्र की स्थिति हीन होने लगी। इस युग में ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय को वैश्य एवं शूद्र धर्म अपनाने की निंदा की गई है। शूद्र काल में वर्णों में जटिलता आ गई थी। वैश्य तथा शूद्र में अंतर धीरे धीरे कम होने लगा। फिर भी शूद्र काल में शूद्रों की स्थिति हीनतम हो गई। शूद्र साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में दोनों श्रमिकों की स्थिति निश्चय ही शोचनीय बन गई थी। प्राचीन भारत में श्रम तथा श्रमिक। नंबर का बौद्ध युग। प्राचीन भारत में नगरीकरण का द्वितीय चरण माना जाता है। सिक्कों का प्रचलन, काले चमकीले मृद भांडों का प्रयोग, लौह तकनीकी आदि इस युग की विशेषताएं हैं। व्यापार एवं वाणिज्य का समुचित विकास हुआ। सामान्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की अपेक्षा व्यापारिक वर्ग के अधिक समृद्धशाली हो गए थे। बौद्ध दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी तो था, परंतु हीन जाति एवं हीन शिल्प व्यवसाय अभी भी समाज में बने रहे। सुत्त विभंग पच्चीति में चंडालो वेड़ो निषादो पुक्कसों को हीन जाति का बताया गया। हीन नामा जाति, चंडाल जाति, वेड़ जाति, निषाद जाति, पुक्कस जाति, ऐसा ही हीन नामा जाति। नलकार, कुंभकार, पेशकार, चंभकार, नाहपति को इसी कारण हीन शिल्पी कहा गया है। संभवतः बौद्ध समाज में इन शिल्पियों को हे दृष्टि से देखा गया था। इस युग में समाज के सभी संभावित तथ्यों का समावेश श्रमिक वर्ग में किया गया है। जातक साहित्य से ज्ञात होता है कि कुलीन तथा उच्च वर्ग के लोगों ने आपत्ति काल में निम्न व्यवसायों को अपनाया। यद्यपि इनकी संख्या कम थी, परंतु श्रमिक वर्ग के विकास में योगदान दिया। वास्तव में अधिकांश श्रमिक अपने पैतृक शारीरिक श्रम में संलग्न थे। बौद्ध युग में सामान्य श्रमिकों की स्थिति दासों की तुलना में श्रेष्ठ थी। मिलिंद पनहों में दास पुत्र की अपेक्षा मृतक श्रेष्ठ माने गए हैं। दास श्रमिकों को तो घरेलू पशुओं की तरह भोजन दिया जाता था, परंतु वेतन भोगी श्रमिकों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। कुछ जातकों में दास श्रमिकों को अपने स्वामी का भोजन पकाते दिखाया गया है। चंडाल, पुक्कस, निषाद आदि को अस्पृश्य श्रमिक माना गया था। पशुओं से भी खराब स्थिति इनकी मानी गई थी। मातंग जातक से ज्ञात होता है कि 16,000 ब्राह्मणों को चंडालों के स्पर्श से अपनी जाति खोनी पड़ी थी। एक जातक से ज्ञात होता है कि एक सेठी पुत्री ने चंडाल को देखा भर था, उसे सुगंधित जल से अपना मुख धोना पड़ा तथा चंडाल को इतना पीटा गया कि वह बेहोश पड़ गया था। नंबर 2, मौर्य युग में शूद्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण हुआ। कौटिल्य के अनुसार शूद्रों की उत्पत्ति उसी स्रोत से हुई जिससे अन्य वर्णों की हुई थी। अतः रजक तंतु आय आदि श्रमिक वर्गों को कौटिल्य ने आर्य कहा है। कौटिल्य के अनुसार शूद्र आर्य होने के कारण अपनी संतासों को दास बनाने के लिए बेच नहीं सकता था। आर्य प्राणम प्राप्त व्यवहारम शूद्रम विक्राय धानन यतः नत्वे वार्पस्य दास भावः। कौटिल्य ने शूद्र को आर्य प्राण कहा है। अर्थशास्त्र ने शूद्र को न्यायालय में प्रस्तुत होकर प्रमाण देने की छूट दी गई है। कौटिल्य ने श्रमिक वर्ग की सामाजिक एवं वैधानिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। श्रमिकों का जो वेतन निर्धारित हुआ है स्वामी उसे देने के लिए बाध्य था। इसका उल्लंघन करने पर स्वामी दंडनीय होगा। यथा संभाषितम वेतन लभेत वेतनादाने 10 बंधो दंड। नंबर 3, महाभारत काल में। महाभारत तथा मनु का श्रमिकों के प्रति परिवर्तित व्यवहार तथा दृष्टिकोण पर लक्षित होता है। महाभारत में शूद्रों को नवीन विशेषाधिकार दिए गए हैं। व्यवस्थाकारों का उदार दृष्टिकोण दिखाई देना है। जन्म की अपेक्षा गुणों पर बल दिया गया। महाभारत में कहा गया है कि द्विजों की सेवा के अतिरिक्त शूद्र व्यापार, पशुपालन तथा अन्य शिल्पी कार्य कर सकते थे। वाणिज्य पशुपात शिल्पोपजीवनम शूद्रायस्यापि विधि अन्ते यथा वित्तीर्ण जायते। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ के समय शूद्रों को भी आमंत्रित किया था। महाभारत में अपने हाथों से कार्य करने की प्रशंसा की है। ना पाढ़ी लाभ दधिको लाभ है विद्यते। नंबर चार, मनु ने भी शूद्रों को अन्य व्यवसाय तथा शिल्पी कार्य करने की अनुमति दी है। ब्राह्मणों को भी शूद्रों से कला सीखने की सलाह मनु ने दी है। उन्होंने द्विजों की तरह शूद्रों को धार्मिक कृत्यों के संपादन की अनुमति तो दी, परंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे। नंबर पाँच, गुप्त युग में श्रमिकों की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। याज्ञवल्क्य से ज्ञात होता है कि शूद्र शिल्पी एवं व्यापारी भी हो सकते थे। शूद्रस्य द्विजा सुश्रुषा तया अवलीन अलीवन वड़ी गभवेत शिल्पैर वा विभिद जीवेत दी जाति हितमाचरण। याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति और बृहस्पति के अनुसार शूद्रों का सामान्य व्यवसाय शिल्पी कार्य बन गया था। शूद्राय सर्व शिल्पानि। मृच्छकटिक के अनुसार नापमित तथा चर्मकार सेनापति के पद पर विभूषित हुए थे। प्रवीण श्रमिक इतने समृद्धशाली बन गए थे कि उन्होंने अपने संघों का निर्माण कर लिया था। गुप्त यकीन अभिलेखों तथा साहित्य से प्रचुर मात्रा में शिल्पों की श्रेणियों का परिचय हमें मिलता है। बृहस्पति के अनुसार श्रेणियों को अपने नियम थे, जिनका सम्मान प्रशासकीय वर्ग भी करते थे। गुप्त युगों में श्रमिकों की प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालता है। जम्बू दीप प्रणाति के अनुसार वड़क की 14 रत्नों में गिना जाता था। नंबर छह, स्मृतिकार। स्मृतिकारों ने वेतन भोगी श्रमिकों एवं स्वामी के संबंधों पर प्रकाश डाला है। विष्णु के अनुसार यदि कार्य पूर्ण नहीं भी हो तो भी यदि स्वामी श्रमिक को निष्कासित करता है तो स्वामी दंडनीय होगा। बृहस्पति ने कहा कि यदि स्वामी श्रमिक का वेतन भुगतान नहीं करता है तो राजा को चाहिए कि स्वामी को दंड दे। नारद ने स्वामी को ब्याज सहित वेतन अदायगी पर बल दिया है। परंपरागत वर्णों की दैवीय उत्पत्ति के विरुद्ध वायु तथा ब्रह्मांड प्राणों में शूद्रों के जनक वशिष्ठ बताए गए हैं। सुकालाम नाम मित्रो वशिष्ठस्य प्रजापते हिरण्यगर्भस्य सुता शूद्रानाम अस्तानाम भावयन्त्युत्यत। यह समाज में शूद्रों की सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। डॉक्टर पीसी जैन के मता के अनुसार वैष्णव शैव एवं तांत्रिक धर्मों के आगमन ने श्रमिक वर्गों की सामाजिक स्थिति के संवर्धन में योगदान दिया। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियां एवं किसड़ा नारायण एवं वासुदेव की उपासना से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। केजी गोस्वामी ने ध्यान आकर्षित किया है कि श्रमिक वर्ग के सदस्य इन धर्मों के उपासक थे। नंबर सात, गुप्तोत्तर तथा पूर्व मध्ययुगीन भारत में शूद्रों तथा श्रमिकों को समान मिलता रहा। ब्राह्मण एवं शूद्रों के मध्य व्यवहारिक संबंध इसके प्रचारक है। बाण के 213 भाइयों चंद्रसेन एवं मित्रसेन की मात्रा शूद्रा थी। बाण यद्यपि परंपरागत ब्राह्मण थे, परंतु उनके मित्र विभिन्न शिल्पी वर्ग के लोग। श्रम के प्रकार। उपयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर हमें दो प्रकार के श्रमिक मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नंबर एक, वेतन भोगी श्रमिक। नंबर दो, दास श्रमिक। वेतन भोगी श्रमिकों के अंतर्गत कृषि श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक प्रमुख हैं। औद्योगिक श्रमिक। वेतन भोगी श्रमिक प्राचीन भारत में प्रवीण शिल्पियों के अतिरिक्त एक ऐसा समुदाय था जिसके पास खेती नहीं थी। वे इस वर्ग के लोग या तो वेतन भोगी श्रमिक बने अथवा हीन शिल्पों जैसे कुंभकार, टोकरी बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले आदि के पालन से अपनी जीविका अर्जित की। वैदिक युग से पूर्व मध्ययुगीन भारत के साहित्य तथा अभिलेखों से विभिन्न उद्योगों का परिचय मिलता है कि इन शिल्पियों ने प्राचीन भारत के आर्थिक विकास में ही योगदान नहीं दिया, वरन साथ ही साथ स्थापत्य कला के विकास में भी इनका योगदान रहा। दास श्रमिक। दास श्रमिक व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महती भूमिका निभाई थी। दास अधिकारी विहीन वह व्यक्ति है जिसका कोई वैधानिक स्थिति नहीं होती है। पूर्व वैदिक साहित्य में दस्यु अथवा दास के संदर्भ मिलते हैं। आर्यों के साथ इनके संघर्ष के अनेकों उल्लेख ऋग्वेद में मिले हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय भूभाग की आदिम जातियों को अनाज स्वीकार कर उनको दास कहा है, परंतु भाषा शास्त्र की दृष्टि से संबर, सुसृण, तुग्र, वेतसु, चुमरी, अरबत जैसे दास नेताओं के नाम अनार नहीं प्रतीत होते। दास इंद्र और वरुण के विरोधी बताए गए हैं। अग्नि में हवि दान नहीं करते थे। दस्यु भी अदेवयु, अब्राहन और अयज्वन बताए गए हैं। सबसे रोचक तथ्य यह है कि ऋग्वेद में दान के लिए पुरुष दास का उल्लेख बहुत कम मिलता है, जबकि नारी दासों का दान की वस्तु में स्वीकार किया गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास प्रथा ऐश्वर्य एक स्रोत के रूप में विद्यमान थी, किंतु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग की प्रथा प्रचलित न थी। नंबर का बौद्ध युग में दास प्रथा अस्थायी रूप में। विनय पटिका में दासों के तीन प्रकार बताए गए हैं। नंबर एक अंतो जातो, स्वामी के घर में उत्पन्न दास। नंबर दो धनिक कतो, धन से क्रय किए गए दास। नंबर तीन कर्मरानीतो, युद्ध में पकड़े गए दास। विधुर पंडित जातक में इनकी संख्या चार मिलती है। दासों के कार्य। दासों को कार्यों की दृष्टि से अभिलिखित दास हमें ज्ञात होते हैं। नंबर एक दशक पुत्र, नंबर दो दासी पुत्र, नंबर तीन कंभंत दास, नंबर तीन कंभंत दास, नंबर चार पेशकर दास तथा राजक दास, नंबर पाँच शुद्ध दास, नंबर छह भिक्खु दास। नारी दासियों के भी निम्न उल्लेख मिलते हैं। नंबर एक कुलदासी, नंबर दो नाती दासी, नंबर तीन देवदासी, नंबर चार वनदासी, नंबर पाँच कुंभदासी, नंबर छह विही को तिक दासी, नंबर छह दासी चा भारिया चा, नंबर आठ यक्ष दासी। बौद्ध युग में संपत्ति का अधिकार दास को नहीं था, परंतु कौटिल्य ने उन्हें कुछ अधिकार दिए। वह शेष समय में अर्थ का उपार्जन कर सकता था, वह भौतिक संपत्ति का स्वामी था। मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण पुनरुत्थान होने से उनकी स्थिति में हास हुआ। गुप्त युग में उनकी स्थिति में सुधार हुआ। सामान्यतः दासों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, नंबर एक कृषक दास, नंबर दो घरेली दास। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में धनाढ्य कृषक खेती के लिए दास रखते थे। ठेरी गाथा में दास काम का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने भी कृषक दासों का उल्लेख किया है। गृह कार्यों से संबंधित दासों के उल्लेख भी मिले हैं। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दासों को कार्यों में लगाते थे। चुल्ल वग एवं जातकों से विदित होता है कि दास भोजन बनाते थे, कुएं और जलाशय से पानी लाते थे। इसके अतिरिक्त बर्तन धोना, धान सुखाना, अन्नागार आदि की रखवाली करना आदि विभिन्न प्रकार के कार्य थे। नारद के अनुसार दासों को गृह द्वार, मार्ग और पहाड़ी आदि को साफ करने में, शरीर के गुहांग की सफाई करने में, मूत्र आदि के फेंकने जैसे कार्य में लगाना चाहिए। यदा कदा दास दासियां अपने स्वामी के निर्देश पर अन्य स्थानों पर श्रम कार्य के लिए जाती थी और जो द्रव्य प्राप्त होता था उसे अपने स्वामी को अर्पित कर देती थी। इस प्रकार अर्जित किया हुआ धन दास का था या स्वामी का, इसे स्पष्ट करते मनु ने कहा है कि दास द्वारा उपार्जित धन उसके स्वामी का है। भार्या पुनश्च दासस्य त्रय एवाधना स्मृता पत्ते समदिखच्छन्ति तस्य देतस्य ददनम्। नंबर का मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटकों में दासों के चार प्रकार बताए गए हैं, वही कौटिल्य ने नौ प्रकार के दास बताए हैं। उदरदास, दंड प्रणीत, ध्वजाहित, गृहजात, दयागत, लब्धकृत, आत्मविकार तथा अहितिका। कौटिल्य ने दास प्रथा की कानूनी वैधता को स्वीकार किया था। बौद्ध तथा मौर्य काल में दास संपत्ति का एक रूप माने गए हैं। अब दास प्रथा केवल आर्थिक कारणों से संबंधित थी। नंबर घा गुप्त युग पूर्व काल की अपेक्षा दासों की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। गुप्त काल में कुछ दास शूद्र भी थे। दासियों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है जो धनी लोगों की गृह दासियां थी। अमरकोश में दास सीभन दासियों के दल का उल्लेख है। गुप्त काल में दास प्रथा निर्बल हो गई थी क्योंकि नारद ने दास मुक्ति का विधान बताया है। डॉक्टर आर्य शर्मा के अनुसार ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी और इस कारण दास प्रथा में भी कमजोरी आई। नंबर अंगापुर मध्य काल में दास प्रथा की पुनः वृद्धि हुई। राजा सामंत एवं गृहस्थों के अतिरिक्त बौद्ध मठों, वैष्णव स्वयं और शाक्त मंदिरों में भी दास रहते थे। समराज कहा एवं प्रबंध चिंतामणि में दास व्यापार के संबंध संदर्भ मिलते हैं। लेख पद्धति के अनुसार वस्तुओं के विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों को होता था। दास दासियों को दान में भी दिया जा सकता था। विज्ञानेश्वर के अनुसार बहुत से लोग ऋण चुकाने के लिए अपने को दास के रूप में बेच देते थे। मठों और मंदिरों द्वारा दास बड़ी संख्या में कृषि कार्य के लिए भी उपयोग में लाए जाते थे। लेख पद्धति से ज्ञात होता है कि दासों को पीटा जा सकता था। उनकी मुक्ति का कोई भी उपाय इस काल के शास्त्रकारों ने नहीं खोजा, अतः इस युग के दासों की स्थिति शोचनीय हो गयी।